अब मैं अध्याय पांच, जिसका शीर्षक है सामाजिक पद, स्थिति एवं भूमिका, सोशल पोजीशन, स्टेटस एंड रोल, इसका रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्न रूप से सामाजिक स्थिति या हैसियत यानी सोशल स्टेटस, सामाजिक हैसियत की उत्पत्ति, भूमिका, भूमिका का वर्गीकरण, स्थिति सेट एवं भूमिका सेट, भूमिका दूरी, भूमिका तनाव एवं भूमिका द्वंद्व या संघर्ष, स्थिति एवं भूमिका द्वंद्व से निपटने की क्रियाविधि या युक्ति, इन सब पर विचार करेंगे। सामाजिक पद, स्थिति एवं भूमिका, सोशल पोजीशन, स्टेटस एंड रोल। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में निश्चित रूप से एक अपना पद होता है। यह पद या स्थान किसी को विरासत में मिलता है तो किसी को अपनी मेहनत या योग्यता के बदौलत प्राप्त होता है। जैसे प्रत्येक प्राणी इस धरती पर अपने लिए कुछ स्थान बनाता है, वैसे ही व्यक्ति भी सामाजिक धरातल पर स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ जगह घेरता है, जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक पद यानी सोशल पोजीशन कहा जाता है। एचएम जॉनसन के अनुसार सामाजिक पद के दो तत्व होते हैं, अधिकार यानी राइट एवं बाध्यता यानी ऑब्लिगेशन। दूसरे शब्दों में सामाजिक पद व्यक्तियों के अधिकारों एवं बाध्यताओं का एक जटिल समग्र है। यदि समाज व्यक्ति को कोई पद देता है तो उस पद के मुताबिक उस व्यक्ति को कुछ अधिकार और कर्तव्य भी देता है। समाजशास्त्रीय भाषा में अधिकार को स्थिति या हैसियत एवं बाध्यता को भूमिका या फर्ज यानी रोल कहा जाता है। जॉनसन ने इस संबंध में स्पष्ट ढंग से लिखा है, दस एवरी सोशल पोजिशन इज अ स्टेटस रोल। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जो एक व्यक्ति की स्थिति है वही दूसरों के लिए भूमिका है, और जो किसी व्यक्ति की भूमिका है वही दूसरों के लिए सामाजिक स्थिति है। यही कारण है कि स्थिति संरचना यानी स्टेटस स्ट्रक्चर एवं भूमिका संरचना यानी रोल स्ट्रक्चर के बीच सीधा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मानवशास्त्री लिंटन के इस विचार से जॉनसन सहमत नहीं है कि स्थिति यानी स्टेटस और पद यानी पोजीशन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जॉनसन स्पष्ट रूप से यह मानते हैं कि स्थिति किसी पद का एक अंग मात्र है। प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि जॉनसन ने सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक पद को लगभग एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है, लेकिन दोनों के बीच बारीक भेद को उन्होंने ध्यान में रखा है। ऐसे इन शब्दों को समान अर्थ में ढीले ढाले ढंग से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक पद के साथ व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े हुए होते हैं, लेकिन स्थिति कहने से मुख्य रूप से व्यक्ति के अधिकारों का ही बोध होता है, क्योंकि भूमिका को स्थिति से अलग करके देखने का प्रयास किया जाता है। यहाँ इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्थिति भूमिका को प्रभावित करती है और भूमिका स्थिति को। दोनों एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर करते हैं, पर सैद्धांतिक स्तर पर दोनों का विश्लेषण अलग अलग किया जाता है। जॉनसन ने बताया है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक सामाजिक पद प्राप्त होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक साथ राष्ट्रपति, पिता, पति या पुत्र कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार एक सामाजिक पद पर एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, जैसे वकालत के पेशे से जुड़े तमाम लोगों को समाज एक ही रूप में देखता है। उसी प्रकार शिक्षण कार्य से जुड़े शिक्षकों को समाज समान पद पर देखता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक पेशे के तमाम व्यक्तियों का सामाजिक पद समान होता है, लेकिन उनके बीच सामाजिक स्थिति में भिन्नता हो सकती है। जिस व्यक्ति की जैसी भूमिका होती है या जैसा वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसी के अनुसार समाज में उसकी स्थिति भी बनती है। जैसे तमाम वकीलों का पद एक समान है, पर स्थिति में समानता नहीं है, क्योंकि उनकी भूमिकाओं के निर्वहन के स्तर में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कोई अच्छा वकील होता है तो कोई औसत दर्जे का, कोई उच्च, माफ़ करिए इसे फिर से सुनिए, कोई उच्च कोटि का कवि या कलाकार है तो कोई साधारण कवि या कलाकार है। यहाँ यही स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक पद की अवधारणा को समूह के संदर्भ में देखा जाता है, जबकि सामाजिक स्थिति को व्यक्ति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सामाजिक पद व्यक्तियों के समूह का होता है, जबकि सामाजिक स्थिति आरोपित या व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत क्षमता द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। प्रत्येक सामाजिक पद के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है और समय के साथ इस प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे एक समय था जब नाचने गाने वालों को समाज बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं मानता था। आज दूर संचार के साधनों का इतना विकास हो गया है कि वैसे लोग इतना अधिक धन उपार्जन कर लेते हैं कि उनकी हैसियत कवि, लेखक या अन्य प्रकार के विद्वानों से कहीं ऊपर है। अंग्रेजी शासन काल में वकालत एक बहुत ही प्रतिष्ठित पेशा माना जाता था। आज समाज में वकीलों की प्रतिष्ठा इतनी कम हो गई है कि उस पेशे को कोई व्यक्ति लाचारी में ही अपनाता है। यहाँ हम सामाजिक पद के दोनों कंपोनेंट्स की बारी बारी में चर्चा करेंगे। सामाजिक स्थिति या हैसियत यानी सोशल स्टेटस। सामाजिक स्थिति आधुनिक समाज की एक बुनियादी अवधारणा है। सामाजिक स्थिति के अभाव में सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए तो बियर स्टेट ने कहा है कि सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ स्टेटस। इस अवलोकन से यही स्पष्ट होता है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जिन सामाजिक स्थितियों का निर्माण होता है उसी का एक समग्र है। यहाँ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि समाज मात्र सामाजिक स्थिति का एक समग्र है। समाज क्या है इसकी चर्चा विस्तार से पहले की जा चुकी है, इसलिए यहाँ पुनः इसकी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक स्थिति को अलग से विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा इसलिए की जा रही है कि सामाजिक स्थिति एक ऐसा उपकरण है जिसे समझे बिना आधुनिक समाजशास्त्र को ठीक से समझना संभव नहीं है। अन्य सामाजिक अवधारणाओं की तरह सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करने में कुछ वैचारिक कठिनाइयाँ यानी कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे रैंक ऑर्डर के अर्थ में समझने का प्रयास किया है। जब भी हम रैंक की बात करते हैं तो उच्च या निम्न वर्ग का भाव प्रकट होता है। इसके साथ हमेशा इज्जत या प्रतिष्ठा का भाव जुड़ा होता है। दूसरी तरफ कुछ समाजशास्त्री स्थिति से पद या अवस्था यानी पोजीशन और कंडीशन का भाव व्यक्त करते हैं और उसके साथ कोई क्रम या दर्जा यानी रैंक का भाव नहीं होता है। इसी अर्थ में हम वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस, उम्र स्थिति यानी एज स्टेटस, यौन स्थिति यानी सेक्स स्टेटस या रिश्तेदारी स्थिति यानी किनशिप स्टेटस, सदस्यता स्थिति यानी मेंबरशिप स्टेटस आदि की बात करते हैं। समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण सामाजिक नियमों के अनुसार होता है। स्थिति सामाजिक नियमों से अलग नहीं है। किसी व्यक्ति को समाज में कैसा आचरण करना है या किसी व्यक्ति का समाज में क्या अधिकार, कर्तव्य या उत्तरदायित्व है, इसका निर्धारण उस व्यक्ति की स्थिति से होता है। सामाजिक मानदंड यानी सोशल नॉर्म्स व्यक्तियों से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि व्यक्तियों की स्थिति से जुड़ा होता है। व्यक्तियों के व्यवहार का संचालन सामाजिक मानदंड के द्वारा व्यक्ति की स्थिति से मालूम होता है। इस बात की पुष्टि बियर स्टेट के निम्नलिखित अवलोकन से होती है। द नॉर्म्स विच इन्वॉल्व राइट ड्यूटीज प्रिविलेज ऑब्लिगेशन प्रिक्यूजिट्स एंड प्रीरोगेटिव आर अटैच्ड टू स्टेटस एंड नॉट टू इंडिविजुअल्स। बियर स्टेट 1970। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि स्थिति मात्र किसी समाज या समूह में पद का नाम है। प्रत्येक समाज या समूह में बहुत सारे पद होते हैं, या यह कहा जाए कि जितने लोग उतने ही अधिक पद भी होते हैं। आधुनिक जटिल समाज में तो एक व्यक्ति के एक से अधिक पद होते हैं। व्यक्ति जितने ही अधिक किस्म के समूहों से अंतःक्रिया करता है, उसकी उतनी ही अधिक सामाजिक हैसियत होती है। और कभी कभी एक ही समूह में एक व्यक्ति की एक से अधिक स्थितियां होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार में पिता, पुत्र, भाई, पति एवं अभिभावक के रूप में होता है, वही व्यक्ति अपने परिवार के बाहर किसी आम समूह का सदस्य होता या किसी अन्य समूह में उच्चाधिकारी भी। कभी वह व्यक्ति अस्पताल में एक रोगी की स्थिति में होता है, तो कभी हवाई अड्डे पर एक यात्री के रूप में भी होता है। संक्षेप में यहाँ यही कहा जा सकता है कि द स्टेटस इज द पोजिशन अफोर्डेड बाय ग्रुप एफिलेशन, ग्रुप मेंबरशिप और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। बियर स्टेट 1970। गिडिंस के द्वारा दी गई सामाजिक हैसियत की परिभाषा से इस अवधारणा का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा है कि द स्टेटस रेफर्स टू डिफरेंसेस बिटवीन सोशल ग्रुप्स इन द सोशल ऑनर और प्रेस्टिजियस दे आर अकॉर्डेड बाय अदर। गिडिंस 1993। गिडिंस ने बताया है कि सामाजिक स्थिति इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कोई व्यक्ति किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात एक ही वर्ग में रहकर तमाम लोगों की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती है। इसके साथ सामाजिक स्थिति हमेशा प्रतिष्ठा को ही इंगित नहीं करती। सामाजिक स्थिति किसी के लिए सकारात्मक महत्व की होती है तो किसी के लिए नकारात्मक। अतः सामाजिक स्थिति को प्रतिष्ठा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सामाजिक स्थिति से समाज में व्यक्तिगत हैसियत का अंदाजा मिलता है। यह एक सापेक्षिक अवधारणा है। इस अर्थ में किसी व्यक्ति की स्थिति हम दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में देखते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में स्थिति को मुख्य रूप से दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम, स्थिति से तात्पर्य समाज में एक ऐसे पद से है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, जैसे माता, पिता, भाई, शिक्षक, दोस्त इत्यादि। ये तमाम सामाजिक पद हैं और इसी पद के अनुरूप समाज उस व्यक्ति से व्यवहार की अपेक्षा करता है। प्रारंभ में सिर्फ समाजशास्त्री ही नहीं बल्कि मानवशास्त्री भी स्थिति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में करते थे। जैसे रैल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1936 में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था और एक लंबे समय तक समाजशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता रहा। स्थिति का दूसरा अर्थ प्रतिष्ठा और इज्जत यानी प्रेस्टिज और ऑनर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे समाजशास्त्री स्थिति की प्रतिष्ठा के बहुत एक बार फिर से सुनिए बहुत सारे समाजशास्त्री स्थिति को प्रतिष्ठा के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समाजशास्त्रीय साहित्य को देखने से पता चलता है कि स्थिति शब्द का प्रयोग इन दोनों अर्थों में हो रहा है। कुछ समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री स्थिति शब्द का प्रयोग सामाजिक पद यानी सोशल पोजीशन के अर्थ में भी करते हैं, अर्थात वे जॉनसन के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि स्थिति पद का एक अंग है। यहाँ एक चिंता की बात यह है कि समाजशास्त्र में कभी तो किसी तकनीकी शब्द का प्रयोग बहुत ही सीमित अर्थों में किया जाता है तो कभी ढीले ढाले ढंग से प्रयोग किया जाता है। ऐसी हरकतों से समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाने में अड़चनें आती हैं। ब्रूम एवं सेल्सनिक ने बताया है कि स्थिति शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में मुख्य रूप से दो अर्थों में होता है और वे दोनों अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, स्थिति का संबंध व्यक्ति के सामाजिक पद से है। इस अर्थ में स्थिति से उच्च और निम्न यानी हाई एंड लो स्तर का भाव व्यक्त नहीं होता है। दूसरा, स्थिति शब्द का प्रयोग सामाजिक श्रेणी यानी सोशल रैंकिंग के अर्थ में होता है और जब हम समस्त श्रेणीबद्ध व्यवस्था की बात करते हैं तो उसे ही स्थिति पद्धति यानी स्टेटस सिस्टम कहा जाता है। वर्तमान समय में स्थिति शब्द का प्रयोग समान रूप से दोनों अर्थों में होता है। स्थिति का निर्धारण किस प्रकार होता है और उसके कौन कौन से कारक हैं यह भी एक रोचक विषय है, लेकिन इसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है क्योंकि इस विषय की चर्चा अस्तरण के अध्याय में की जाएगी। सामाजिक हैसियत की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सोशल स्टेटस। समाजशास्त्र में यह एक रोचक प्रश्न है कि स्थिति की उत्पत्ति कैसे होती है। J.H. फिक्टर ने इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि समाज में व्यक्तियों की स्थिति दो स्रोतों से निर्धारित होती है, पहला आरोपित एवं दूसरा अर्जित। इसी आधार पर सामाजिक हैसियत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आरोपित स्थिति तथा अर्जित स्थिति। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों को कुछ पद समाज के द्वारा दिए जाते हैं तो कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों और योग्यताओं के बल पर प्राप्त करता है। जो सामाजिक स्थिति समाज में आरोपित है और उसमें व्यक्तियों की अपनी भूमिका कम होती है और समाज की भूमिका अधिक होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आरोपित सामाजिक स्थिति अनैच्छिक होती है यानी नॉन वॉलंटरी होती है। लेकिन आरोपित स्थिति भी दो प्रकार की होती है, एक तो वह जिस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता और दूसरा वह जिस पर व्यक्ति का थोड़ा नियंत्रण होता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो सामाजिक स्थिति किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है उसमें व्यक्ति की अपनी कोई भूमिका नहीं होती है। व्यक्ति जन्म से उच्च वर्ग या निम्न जाति का होता है यह शुद्ध रूप से अनैच्छिक सामाजिक स्थिति है। दूसरी तरफ कुछ वैसे भी आरोपित सामाजिक स्थितियां होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे वैवाहिक स्थिति। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर सकता है या कुंवारा रह सकता है। विवाह के माध्यम से भी आरोपित सामाजिक स्थिति में बदलाव आता है। कोई व्यक्ति निम्न श्रेणी में पैदा लेकर उच्च श्रेणी की महिला से विवाह कर समाज में ऊंचा स्थान पा सकता है। ठीक इसके विपरीत वर्तमान समय में कोई ब्राह्मण दलित या मुस्लिम लड़की से विवाह कर अपनी उच्च सामाजिक स्थिति को गंवा सकता है। आरोपित सामाजिक स्थिति का आधार मुख्य रूप से जैविक होता है। जाति, प्रजाति, उम्र, यौन, इन जैसे निर्धारकों के आधार पर मुख्य रूप से सामाजिक हैं। हालांकि विवाह का संबंध भी उम्र, इसका भी स्वरूप जैविक ही है, से ही जुड़ा हुआ है। अर्जित सामाजिक स्थिति के अंतर्गत समाज की इच्छाएं कम काम आती हैं और व्यक्ति की अपनी इच्छाएं प्रमुख होती हैं। व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर स्थिति अर्जित करता है। अर्जित सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आसानी से होता है। कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से समाज में एक स्तर से दूसरे स्तर में आ जा सकता है। यह सही है कि गतिशीलता सामाजिक संरचना के ऊपर भी निर्भर करती है, लेकिन आरोपित सामाजिक स्थिति के तुलना में अर्जित सामाजिक स्थिति में बदलाव कुछ ज़्यादा ही आसान है। मोटे तौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि आरोपित सामाजिक स्थिति अनैच्छिक यानी नॉन वॉलेंट्री होती है, तो अर्जित सामाजिक स्थिति ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री होती है। मुक्त समाज यानी ओपन सोसाइटी के अंतर्गत अर्जित सामाजिक स्थिति की प्रधानता होती है, तो बंद समाज यानी क्लोज सोसाइटी के अंतर्गत आरोपित सामाजिक स्थिति की प्रधानता होती है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय समाज में आरोपित सामाजिक स्थिति की प्रधानता थी, क्योंकि उस समय का समाज सापेक्षिक रूप से काफी बंद था। लेकिन आधुनिक भारतीय समाज में खुलापन बढ़ने से आरोपित और अर्जित सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ विशेषकर शहरों में अर्जित सामाजिक स्थिति की प्रधानता काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। समाज में अर्जित या आरोपित सामाजिक स्थिति का होना इस बात पर भी कभी कभी निर्भर करता है कि वहां शासन तंत्र किस प्रकार का है। तानाशाही राज्य के अंतर्गत आरोपित सामाजिक स्थिति की प्रधानता होती है, क्योंकि राज्य का व्यक्ति और समाज दोनों पर काफी नियंत्रण होता है। इसके प्रतिकूल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अर्जित सामाजिक स्थिति की प्रधानता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की पूरी आजादी होती है। लेकिन कोई भी समाज पूरी तरह न तो आरोपित सामाजिक स्थिति माफ करिए इसे फिर से सुनिए लेकिन कोई भी समाज पूरी तरह न तो आरोपित सामाजिक स्थिति और न ही पूरी तरह अर्जित सामाजिक स्थिति में विश्वास करता है। दोनों प्रकार की सामाजिक स्थिति विश्व के हर समाज में देखने को मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी किसी समाज में अर्जित स्थिति की प्रधानता होती है तो किसी अन्य समाज में आरोपित सामाजिक स्थिति की प्रधानता होती है। किसी भी समाज में तमाम सामाजिक स्थितियां समान रूप से समान महत्व की नहीं होती हैं। प्रत्येक समाज में कोई स्थिति ज्यादा तो कोई कम महत्वपूर्ण होती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि समाज किसी स्थिति को किस रूप में देखता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ईटी हिलर ने मूल स्थिति यानी की स्टेटस की अवधारणा दी है। उन्होंने बताया है कि अमेरिकन समाज में पेशा यानी ऑक्यूपेशन को मूल स्थिति यानी की स्टेटस माना जाता है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में जाति प्रथा एक प्रकार की मूल स्थिति यानी की स्टेटस थी। जिस प्रकार मूल स्थिति भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होती है, वैसे ही एक समाज में भिन्न कालों में मूल स्थिति अलग अलग हुआ करती है। अर्थात समय एवं परिस्थिति के अनुसार मूल स्थिति में परिवर्तन आता रहता है। जैसे भारत में ही अंग्रेजी शासन काल में भू संपत्ति के आधार पर व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता था, तो आज उनकी जगह नौकरी ने ले ली है। समाज में स्थिति का निर्धारण कैसे होता है, इस बात की विस्तार से चर्चा सामाजिक स्तरण के अध्याय में की गई है, इसलिए यहां इसकी पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ संबंधित अवधारणाएं, सम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स। स्थिति से संबंधित बहुत सारी अवधारणाएं प्रचलन में हैं। समाजशास्त्रीय साहित्य के को ठीक से समझने के लिए हमें इन अवधारणाओं को जानना चाहिए। यहाँ कुछ प्रमुख अवधारणाओं को संक्षेप में स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। औपचारिक एवं अनौपचारिक स्थिति, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टेटस। जो स्थिति किसी व्यक्ति को किसी औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होती है, उसे औपचारिक स्थिति कही जाती है। जैसे सचिव, मंत्री, प्राचार्य, कार्यपालक, अभियंता, प्रोफेसर आदि ऐसे अनगिनत पद आधुनिक समाज में हैं जिस पर विभिन्न लोग काम कर रहे हैं। औपचारिक स्थिति के ठीक विपरीत अनौपचारिक स्थिति यानी इनफॉर्मल स्टेटस भी हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति की स्थिति पिता, भाई, दोस्त या किसी अन्य प्रकार के संबंधी के रूप में हो सकती है। ऐसे पद जिसे समाज ने अपने मान्यताओं, आदर्शों, प्रथाओं एवं नियम कानूनों को ध्यान में रखकर सृजित किया है, वे तमाम पद अनौपचारिक स्थिति कहे जाते हैं। बहुत सी औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ पद ऐसे भी होते हैं जो श्रेणी क्रम के हिसाब से छोटे होते हैं, लेकिन उस पद की कुछ अपनी खासियत होती है जिसके चलते उस पद पर काम करने वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसे मंत्री के निजी सचिव का पद एक मध्यम दर्जे का पद है, लेकिन वे अपने विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से भी अधिक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। समाज में बहुत लोग मंत्री के बाद उन्हीं का प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अनौपचारिक स्थिति का दूसरा अर्थ वैसी स्थिति से है जो व्यक्तियों को समाज से प्राप्त होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में साधु एवं फकीरों को प्राप्त होती है, या जो स्थिति परिवार में माता पिता को प्राप्त होती है। प्रकार्यात्मक स्थिति यानी फंक्शनल स्टेटस। बहुत सारे औपचारिक संगठनों के अंतर्गत कुछ ऐसे भी पद हैं जो अपने प्रकार्यों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। प्रतिष्ठा या अधिकार के स्तर पर वह पद छोटा होता है, लेकिन प्रकार्य के दृष्टि से उसका महत्व समाज में काफी अधिक होता है। जैसे पुलिस विभाग में दरोगा का पद एक साधारण पद है, लेकिन समाज उसे बहुत सारे पदों की तुलना में ऊपर रखता है। संभव है कुछ लोग महाविद्यालय के शिक्षक से दरोगा के पद को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उसी तरह कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता की तुलना में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद काफी ऊंचा है, लेकिन आर्थिक लाभ की दृष्टि से कार्यपालक अभियंता के पद को प्रोफेसर की तुलना में ऊंचा स्थान प्राप्त है। सोपानवत स्थिति, स्केलर स्टेटस। जब हम सामाजिक स्थिति को श्रेणीबद्ध तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो उसे सोपानवत स्थिति कहा जाता है। बहुत सारे औपचारिक संगठनों के अंतर्गत व्यक्तियों को वरीयता और श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्थिति की इस संरचना को सोपानवत स्थिति के नाम से जाना जाता है। सोपानवत स्थिति आधुनिक समाज में औपचारिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। अब हम भूमिका की चर्चा करेंगे। भूमिका यानी रोल। भूमिका की अवधारणा मानवशास्त्री रैल्फ लिंटन ने 1936 में दिया था। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न कार्यों के लिए किया था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक अपना अलग स्थान या पद होता है, और उस पद के अनुरूप जो वह कार्य करता है उसे ही भूमिका या फर्ज कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति परिवार के अंतर्गत किसी का भाई है तो किसी का पिता भी। वह व्यक्ति जो भाई या पिता के रूप में परिवार में काम करता है वही उसकी भूमिका हुई। यहाँ यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्य निश्चित रूप से भूमिका ही है। कौन सा कार्य भूमिका है और कौन नहीं, इस तथ्य का स्पष्टीकरण आगे किया जाएगा। लिंटन ने भूमिका को स्थिति का एक गत्यात्मक पहलू यानी डायनेमिक एस्पेक्ट बताया है। फर्ज एवं हैसियत एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, तथा दोनों एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते रहते हैं। भूमिका हैसियत का एक व्यवहारिक पहलू कहा जाता है। किसी पद के अनुरूप जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसे ही भूमिका कहा जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा बहुत ही आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका राष्ट्रपति का पद उनका स्टेटस था, और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में जो काम किया वह उनकी भूमिका थी। किसी व्यक्ति का विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होना उसका स्टेटस कहा जाएगा, और वे व्यक्ति जो प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ा रहे हैं या परीक्षक का कार्य कर रहे हैं वह उनकी भूमिका हुई। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, व्यक्तियों के द्वारा जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं तमाम भूमिका की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। चोरी डकैती करना एक प्रकार का कार्य है, भूमिका नहीं। भोजन करना भूमिका नहीं है, यह एक सामान्य कार्य है। हम उसी कार्य को भूमिका मानते हैं जो कोई व्यक्ति सामाजिक नियम कानूनों एवं आदर्शों की अपेक्षा को ध्यान में रखकर करता है। माता पिता के द्वारा बच्चों को प्यार करना एक सामाजिक भूमिका है, लेकिन अपने माता पिता का अपमान करना भूमिका नहीं है। दूसरी तरफ अपने हक के लिए झगड़ा या संघर्ष करना एक प्रकार की भूमिका है, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं यह कहती हैं कि हमें अपने हक के लिए विरोध या संघर्ष करना चाहिए। भूमिका को ब्रूम एवं सेल्सनिक ने इस ढंग से परिभाषित किया है, इट मे बी डिफाइंड एज पैटर्न ऑफ बिहेवियर एसोसिएटेड विथ अ डिस्टिंक्टिव सोशल पोजिशन। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिका व्यक्तियों के व्यवहार की एक प्रणाली का नाम है। कोई व्यक्ति पिता, शिक्षक, ग्राहक या समाज सुधारक के रूप में जो व्यवहार करता है वही उसकी भूमिका कही जाती है। भूमिकाओं के दो रूप हो सकते हैं, आदर्श भूमिका यानी आइडियल रोल एवं वास्तविक भूमिका एक्चुअल रोल। आदर्श भूमिका वह है जो समाज के द्वारा किसी व्यक्ति से अपेक्षित है, जैसे समाज यह अपेक्षा करता है कि लोग अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें। उसी प्रकार समाज यह भी अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। वास्तविक भूमिका वह है जो किसी विशेष परिस्थितिवश व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करता है। वास्तविक भूमिका का संबंध सामाजिक वातावरण एवं कर्ता के व्यक्तित्व से है। जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होगा वह वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसे छुआछूत की भावना से दूर हटकर व्यवहार करना आदर्श भूमिका है, तो आपसी व्यवहार में छुआछूत बरतना या जातिवादी करना वास्तविक भूमिका है। लेकिन कभी कभी वास्तविक एवं आदर्श व्यवहार में अंतर बतलाना काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे किसी औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न सदस्यों की भूमिका लगभग एक ही प्रकार की होती है। तमाम विद्यार्थी महाविद्यालय में अपने शिक्षकों एवं प्राचार्य से एक ही प्रकार का अनुशासित व्यवहार करते हैं। यहाँ आदर्श भूमिका एवं वास्तविक भूमिका में कोई दूरी दिखाई नहीं पड़ती है। भूमिका की अवधारणा को एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में समझने की चेष्टा की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति की भूमिका कभी भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है। भूमिका को तुलनात्मक ढंग से दो स्तरों पर समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति की भूमिका को हम समान स्थिति वाले व्यक्ति की भूमिका से तुलना कर समझ सकते हैं, या उस व्यक्ति विशेष की अपनी स्थिति यानी स्टेटस को ध्यान में रखकर भी समझ सकते हैं। ये दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी भूमिका को हम मात्र दूसरे व्यक्ति की भूमिका के संदर्भ में ठीक से नहीं समझ सकते हैं। उसे समझने के लिए हमें उस व्यक्ति की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा जो भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उदाहरण स्वरूप, किसी मुख्यमंत्री की भूमिका को हम मात्र दूसरे मुख्यमंत्री की भूमिका के संदर्भ में ही नहीं समझते, बल्कि उस मुख्यमंत्री की अपनी स्थिति के संदर्भ में भी समझने का प्रयास करते हैं। भूमिका के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह एक संबंधनात्मक शब्द यानी रिलेशनल टर्म है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति किसी भी रूप में अपनी भूमिका को निभाता है तो वह दूसरे की भूमिका को ध्यान में रखकर ही ऐसा करता है। एक ही भूमिका दूसरे की व्यक्ति की भूमिका से जुड़ी होती है, जैसे डॉक्टर की भूमिका का संबंध रोगी की भूमिका से है। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है तो उस व्यक्ति के संदर्भ में डॉक्टर की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए भूमिका के साथ हमेशा भूमिका ग्रहण यानी रोल टेकिंग की बात होती है। भूमिका ग्रहण के अभाव में सामाजिक अंतःकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसा कि G.H. मिड ने कहा है, भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया से ही समाजीकरण संभव हो पाता है। भूमिका के ऊपर न्यूकॉम एवं माइकल बेंटल ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यूकॉम ने बताया है कि व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, अपेक्षित एवं वास्तविक व्यवहार, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल बिहेवियर। उन्होंने बताया है कि भूमिका का संबंध आमतौर पर अपेक्षित व्यवहार से होता है, लेकिन मनुष्य हमेशा सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार ही व्यवहार नहीं करता। लोग परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर भी कभी कभी कुछ कार्य करते हैं। इस प्रकार भूमिकाएं भी अपेक्षित एवं वास्तविक, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल हो सकती हैं। बेंटन का कहना है कि भूमिकाओं का संबंध सामाजिक मानदंड और अपेक्षाओं के अनुरूप ही होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा के मुताबिक हमेशा व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। यदि ऐसा हो तो वह सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता या निरंतरता के लिए खतरनाक साबित होगा। समाज में हर जगह हिंसा, तनाव और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब हम भूमिका का वर्गीकरण इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लिंटन का कहना है कि सामाजिक स्थिति की तरह भूमिका भी दो प्रकार की होती है, आरोपित एवं अर्जित भूमिका, स्क्रिप्टिव एंड अचीव्ड रोल। जो भूमिकाएं हमें स्वाभाविक रूप से समाज के सदस्य होने के नाते निभानी पड़ती है, वे आरोपित भूमिकाएं कही जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जो भूमिका भाई या पिता के रूप में, देश के नागरिक के रूप में या एक नवयुवक के रूप में निभानी पड़ती है, वे अपेक्षित भूमिकाएं कही जाती हैं। इसके विपरीत जो भूमिकाएं हम अपनी योग्यता या मेहनत से किसी स्थिति के चलते निभाते हैं, वे अर्जित भूमिकाएं कही जाती हैं। जो भूमिका कोई व्यक्ति डॉक्टर, मंत्री, प्रोफेसर या जज की हैसियत से निभाता है, उसे अर्जित भूमिका कहा जाता है। एस एफ नडेल ने 1957 में लिंटन के वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए दोनों प्रकार की भूमिकाओं को दो भागों में बांटा है, संबंधात्मक भूमिका रिलेशनल रोल एवं गैर संबंधात्मक भूमिका नॉन रिलेशनल रोल। रिलेशनल रोल भूमिका हमेशा पूरक भूमिका यानी कॉम्प्लीमेंट्री रोल से जुड़ी हुई होती है। जैसे किसी व्यक्ति का पति के रूप में भूमिका तभी संभव है जब उसकी कोई पत्नी हो, शिक्षक की भूमिका तभी संभव है जब कोई विद्यार्थी हो। समाज में बहुत सी भूमिकाएं हैं जो किसी अन्य भूमिका की पूरक भूमिका की तरह होती हैं। एक ही भूमिका दूसरों की भूमिकाओं से जुड़ी होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती हैं जिनमें पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक फकीर, साधु, कवि या विद्वान की भूमिका किसी अन्य भूमिका के संदर्भ में नहीं निभाई जाती है, वे स्वतंत्र भूमिकाएं हैं। इन्हें ही गैर संबंधात्मक भूमिका के नाम से जाना जाता है। बेंटन ने 1965 में भूमिकाओं को तीन भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है, बुनियादी भूमिका बेसिक रोल, सामान्य भूमिका जनरल रोल एवं स्वतंत्र भूमिका इंडिपेंडेंट रोल। उन्होंने भूमिकाओं को एक अविच्छिन्न यानी निरंतर पैमाना कंटिन्यूस स्केल पर देखने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि आदिम समाज के अंतर्गत एक भूमिका को दूसरी भूमिका से अलग करना काफी कठिन काम है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं इस प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंधित और आश्रित होती हैं। वैसे समाज में बुनियादी भूमिका की प्रधानता होती है। एक ही भूमिका को एक साथ कई लोग निभाते हैं और उसके बीच कोई भूमिका द्वंद्व भी नहीं होता है। उस समाज में भूमिका का बंटावारा सामान्यतः उम्र या यौन भेद पर आधारित होता है। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होता है और विभिन्न भूमिकाएं एक दूसरे से अलग होती जाती हैं, आधुनिक समाज में भूमिकाओं का स्वरूप इस रूप में बदल जाता है कि विभिन्न भूमिकाओं के बीच अंतर्निर्भरता कम हो जाती है। चूंकि लोग स्वतंत्र जीवन ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इस एकांतवास की स्थिति में स्वतंत्र भूमिकाओं की प्रधानता होती है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और सेवाओं के लिए अलग अलग लोग होते हैं और हर व्यक्ति की अपनी कुछ निश्चित भूमिकाएं होती हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आदिम समाज में बुनियादी भूमिका की प्रधानता होती है तो आधुनिक समाज में स्वतंत्र भूमिका की। विकास के साथ समाज बुनियादी भूमिका से स्वतंत्र भूमिका की ओर बढ़ता है। सामान्य भूमिका दोनों के बीच की स्थिति है। सौथाल ने भूमिका का एक दूसरे प्रकार का वर्गीकरण दिया है। उन्होंने भूमिका के वर्गीकरण का आधार जीवन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों को माना है। जैसे कुछ भूमिकाएं आर्थिक होती हैं तो कुछ राजनीतिक, तो कुछ धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, तो कुछ मनोरंजन से भी जुड़ी हुई होती हैं। जीवन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों को ध्यान में रखकर उन्होंने 5 प्रकार की भूमिका क्षेत्रों की चर्चा किया है। पहला बंधुता यानी किनशिप, दूसरा आर्थिक यानी इकोनॉमिक, तीसरा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, अगला धार्मिक यानी रिलीजियस, और पांचवा मनोरंजनात्मक यानी रिक्रिएशनल। भूमिका की विशेषताएं। भूमिका के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए यहां उनकी विशेषताओं की चर्चा की जा रही है, जो इस प्रकार है। पहली विशेषता, भूमिका स्थिति का निर्धारण करती है और स्थिति भूमिका को। भूमिका और स्थिति के बीच एक अन्योन्याश्रय संबंध है। हम इन दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरी विशेषता, सामाजिक भूमिका फिल्मी भूमिका की तरह नहीं होती, क्योंकि सामाजिक भूमिका यथार्थ से जुड़ी हुई होती है। फिल्मी भूमिका एक काल्पनिक भूमिका है। सामाजिक भूमिका का निर्वाह हम सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों को ध्यान में रखकर करते हैं। तीसरी विशेषता, जिस तरह किसी व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक स्थितियां होती हैं, उसी तरह भूमिकाएं भी एक से अधिक होती हैं, जिसे क्रमशः स्थिति सेट यानी स्टेटस सेट या भूमिका सेट यानी रोल सेट के नाम से जाना जाता है। चौथी विशेषता, सामाजिक भूमिका कभी स्थिर नहीं होती, समय और परिस्थिति में बदलाव के साथ साथ व्यक्ति की भूमिका में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को ध्यान में रखकर ही काम नहीं करता है। जैसी परिस्थिति आती है वह वैसा ही प्रतिक्रिया करता है। जैसे कोई खेल के मैदान में खिलाड़ी के सामने जैसी परिस्थिति आती है वह वैसा ही आचरण करता है। पांचवी विशेषता, भूमिका के प्रमुख दो पहलू होते हैं, पहला आदर्शात्मक एवं दूसरा व्यवहारिक। व्यक्ति हमेशा समाज के आदर्शों के अनुसार ही कार्य नहीं करता, बल्कि अपनी सुविधाओं और स्वार्थों को ध्यान में रखकर भी काम करता है। छठी विशेषता, तमाम भूमिकाएं समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। भूमिकाओं को महत्ता के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। सबसे आवश्यक भूमिका को मूल भूमिका यानी की रोल, और जो भूमिकाएं आवश्यक या महत्वपूर्ण नहीं हैं उन्हें सामान्य भूमिका यानी जनरल रोल कहते हैं। सातवीं विशेषता, भूमिका स्थिति की व्यवहारिक पहलू का नाम है। सातवीं विशेषता, भूमिका स्थिति की व्यवहारिक पहलू का नाम है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके अभाव में किसी भी प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया संभव नहीं है। यह व्यक्ति की स्थिति का एक अनुभवाश्रित यानी एम्पेरिकल पहलू है। इस अर्थ में यह व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है। हैसियत और भूमिका के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटस एंड रोल। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि फर्ज हैसियत का एक व्यवहारिक पहलू है। हैसियत दखल किया जाता है जबकि फर्ज को अदा किया जाता है। स्टेटस आर ऑक्यूपाइड बट रोल्स आर प्लेड। भूमिका से तात्पर्य व्यक्ति की विभिन्न किस्म के कार्यकलापों से है। कोई व्यक्ति कैसा आचरण करता है या वह कैसा अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों को निभाता है, यह उसकी भूमिका हुई। कोई व्यक्ति किस स्थिति में कैसा आचरण करेगा या उसका अपना क्या कर्तव्य या जिम्मेवारी होगी, यह उसकी स्थिति से मालूम पड़ता है। संक्षेप में यहाँ हम यही कहना चाहते हैं कि सामाजिक नियमों को ध्यान में रखकर व्यक्ति जो कोई भी आचरण करता है वह उसकी भूमिका कही जाती है, और जिससे व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण होता है उसे सामाजिक स्थिति कहते हैं। बियर स्टेट के शब्दों में, अ रोल इज व्हाट एन इंडिविजुअल डज इन द स्टेटस ही ऑक्यूपाइज। बियर स्टेट 1970। यहां यह नहीं समझा जाना चाहिए कि स्थिति और भूमिका के बीच एक तरफा संबंध है। यह सही है कि स्थिति व्यक्तियों की भूमिकाओं का निर्धारण करती है, और साथ ही यह भी सही है कि भूमिकाओं के द्वारा स्थिति का निर्धारण होता है। जैसे महात्मा गांधी ने देश के लिए इतना अधिक बलिदान किया कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसी प्रकार जब किसी वैज्ञानिक को अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है तो एक तरफा उसकी सामाजिक हैसियत में काफी वृद्धि हो जाती है। ठीक इसके विपरीत यदि कोई सरकारी या अर्ध सरकारी अधिकारी या नेता रिश्वत या घोटाले में पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं तो उसकी सामाजिक स्थिति में भारी गिरावट आती है। इन उदाहरणों से सही स्पष्ट होता है कि स्थिति और भूमिका दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भूमिका से स्थिति का निर्धारण होता है तथा स्थिति से भूमिका का। फर्ज एवं हैसियत के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए बियर स्टेट ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, स्टेटस इज अ स्ट्रक्चरल फिनोमिना एंड रोल इज अ बिहेवियरल फिनोमिना। स्टेटस इज अ कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, रोल अ कंसेप्ट इन सोशल साइकोलॉजी. स्टेटस डिपेंड्स अपॉन सोशल स्ट्रक्चर, रोल अपॉन द पर्सनालिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स. बियर स्टेट का यह अवलोकन अपने आप में इतना स्पष्ट है कि इस पर कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता ही नहीं है. लेकिन संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि स्थिति एक संरचनात्मक महत्व की अवधारणा है तो भूमिका व्यवहारिक महत्व की अवधारणा है. अर्थात स्थिति का समाजशास्त्रीय महत्व है तो भूमिका का मनोवैज्ञानिक, पर इसके साथ ही वे दोनों एक दूसरे के उतने ही पूरक भी हैं. अब हम स्थिति सेट एवं भूमिका सेट की चर्चा करेंगे. स्टेटस सेट एंड रोल सेट. इस बात की पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि एक व्यक्ति की एक से अधिक स्थिति संभव है. कोई व्यक्ति एक स्थिति में किसी का पुत्र है तो दूसरी स्थिति में वह किसी का पति भी है. वही व्यक्ति कहीं शिक्षक भी है तो कहीं पुजारी भी है. जब एक व्यक्ति के साथ एक से अधिक स्थितियां जुड़ी होती हैं तो उसे स्थिति सेट या समुच्चय यानी स्टेटस सेट कहते हैं. आर के मर्टन ने बताया है जब व्यक्ति की एक स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसके स्थिति समुच्चय में भी परिवर्तन आता है. चूंकि स्थितियों के अनुसार ही व्यक्तियों की भूमिकाएं होती हैं, इसलिए एक व्यक्ति की जितनी स्थितियां होंगी उतनी ही उसकी भूमिकाएं भी. जब किसी व्यक्ति की एक से अधिक स्थितियां होती हैं तो उसी के अनुरूप विभिन्न भूमिकाएं भी बनती हैं, जिसे भूमिका सेट या समुच्चय यानी रोल सेट कहा जाता है. स्थिति सेट और भूमिका सेट की अवधारणा नीचे स्पष्ट किया जा रहा है. एक उदाहरण के आधार पर एक संस्कृत शिक्षक की सामाजिक स्थिति एवं भूमिका. स्थिति सेट, स्टेटस सेट और दूसरी तरफ भूमिका सेट यानी रोल सेट. एक शिक्षक की स्थिति में उसकी भूमिका शिक्षकों, छात्रों और प्रशासकों तक है. एक पिता के रूप में उसकी भूमिका पुत्र, पुत्री, पत्नी, ससुर इत्यादि तक है. जबकि अगर हम एक पुजारी की बात करेंगे तो उसकी भूमिका पुरोहितों और यजमानों तक है. अब हम भूमिका दूरी यानी रोल डिस्टेंस की बात करेंगे. इरविंग गॉफमैन ने 1961 में भूमिका के संबंध में एक नई अवधारणा का प्रतिपादन किया है. उन्होंने बताया है कि आधुनिक समाज में सामान्य तौर पर लोगों को एक से अधिक भूमिकाओं को निभाना पड़ता है. जब कभी भी कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका से उब जाता है या जब उसे कोई भूमिका अरुचिकर लगती है तो उससे वह दूर हटने का प्रयास करता है. जैसे यदि कोई सफल चिकित्सक या वैज्ञानिक जब अपने पेशे से काफ़ी उब जाता है तो कुछ दिनों के लिए वह उस काम से विश्राम ले लेता है और अपना समय परिवार के साथ मनोरंजन में बिताता है. इसी को गॉफमैन ने भूमिका दूरी यानी रोल डिस्टेंस कहा है. भूमिका दूरी या रोल डिस्टेंस की अवधारणा से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने किसी भूमिका एवं स्थिति से अस्थायी तौर पर अलग हो जाता है। भूमिका दूरी से तात्पर्य भूमिका निभाने की प्रक्रिया में मात्र फेरबदल से है। आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाएं होती हैं। जब वह किसी खास प्रकार की भूमिका को किसी कारणवश नहीं निभाना चाहता है तो उससे वह दूर हट जाता है और अपना समय किसी अन्य भूमिका को अदा करने में लगाता है। भूमिका दूरी के माध्यम से व्यक्ति आधुनिक समाज में तनावपूर्ण जीवन से दूर भागने की कोशिश करता है। भूमिका दूरी से रोजमर्रे के जीवन में निरस्ता में कमी आती है।